ठाकुरे नमे जुगादगुरे नमे सतगुरे नमे श्री गुरुदेव नमे।
लेने को सतनाम है, देने को अनदान, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई रखा दुर्लभ तजनी ये। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। काला मुख करे मान का, दर लाए आम। मान बड़ाई छोड़ कर रहे नाम से लाग। तुमने गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विषम हो जाई। हम जैसे अपराधी और कोई राखे, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाई। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंधव तू मेरा सखा सहाई। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन के रा, जित मिलिए चूपे सब सोग संतापे।
सतगुर नमः, श्री गुरुदेव नमः। दास दोनों हाथ जोड़ के संगत दे चरणा च मथा टेकते हुए अपने गुनाह की माफी ले अरदास बेनती करता है। संगत ही समर्था है बख्शन दी, बख्शन दी कृपालता करो। संगत दे बख्शे नू गुरु साहब भी बख्श देंदे हैं। आज दे इस रूहानी सत्संग लई गुरु साहिबां ने जो शब्द बख्शिश किया है वह है दीनता। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जाने आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। गुरु साहबा ने अपनी बाणी दे विच इस दीनता नु प्रगट किया है। यह दीनता की है? इस जगत दे विच जो भी भौतिक वस्तुआं या संबंध सानू नजर आंदे ने, जीवात्मा जदों इन्हां नु प्राप्त करन वास्ते कोई उदम करती है और इन्हां नू प्राप्त करती है तो वह अभिमान है। अभिमान करके ही वह सारिया वस्तुओं नू इकट्ठा करती है। दीनता जा जो व्योम शब्द है वह अभिमान है, यानी अभिमान तो उल्टा है दीनता। अमीरी है अभिमान, फकीरी गरीबी है दीन होना। इस जगत दे विच अमीर होना की है? जिस तरीके दे नाल जीवात्मा इस जगत दे विच विचरण करके ये सारे संबंधा नू इकट्ठा करती है, वस्तुआ नू इकट्ठा करती है, इसनू अमीरी दी संज्ञा दिती गई है रूहानियत दे विच। और जदों ये सारिया वस्तुआ नू त्याग करके उस परमात्मा दे नाल जुड़ती है, उसनू प्राप्त करन दी कोशिश करती है और उसनू प्राप्त करन लई उस परमात्मा दे अगे फकीर बन के गरीब हो करके दीनता नू अपनांदी है, तो इसी नू असी दीनता कहंदे हां। जिसनू प्राप्त करके ये जीवात्मा इस लायक बनती है कि उस परमात्मा नू प्राप्त कर सके, जिस नू प्राप्त करन दे बाद ये जीवात्मा कदे भी जन्म और मरण दे गेड़ दे विच नहीं आंदी। असी इस जगत दे विच देखते हाँ एक बंजारा है, वो 8 महीने व्यापार करता है और चौमासे दे विच यानी 4 महीने बैठ करके वो कीती गई कमाई नू खांदा है, 8 महीने भ्रमण करता है, दर दर जाता है, देश विदेश जाता है सिर्फ कमाई करने वास्ते। गुरु साहब उदाहरण देंदे ने उस तरीके दे नाल 84 लाख जीवन जो रची गई है इस सृष्टि दे विच, इस दे विच जो मनुखा जन्म है एक कमाई दा विषय है, यानी कि मनुखे जन्म दे विच आकर के जीवात्मा ने कमाई करनी है और बाकी दिया जड़िया 84 लाख जूना ने यह सिर्फ भोगी जूना ने, उत्तम भोग है, निचली जूना का भोग है। यानी कि मनुखे जन्म दे विच जीवात्मा जिस तरीके की कमाई करती है, चाहे वह पुन की कमाई करे चाहे पाप की करे, अगर पाप की कमाई करती है तो उन्हें नरकों के विच जा करके यह अपनी कीती गई कमाई भोगनी पैंदी है, यानी खानी पैंदी है। इस करके भुल के भी कदे भी जीवात्मा नू पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और दूसरे पासे पुन है, जितने भी दान पुन किते जांदे ने, अच्छे कर्म किते जांदे ने, उन्हां दा फल की प्राप्त हुंदा है स्वर्गा विखुंटा दे विच, इस जीवात्मा नू उत्तम भोग भोगण वास्ते मिलते ने। यानी कि जैसी कमाई कीती वैसे ही भोग भोगण वास्ते इस जीवात्मा नू 84 लाख जन्म बार बार लेने पैंदे ने। हुण मनुखे जन्म दे विच आ करके अगर असी दान पुन किते ते फिर की फायदा होया, क्यों? क्योंकि इन्हां नू कट्टण वास्ते, यानी जैसी फसल बीजी है इस नू कट्टण लई किसान नू जो है खेत दे विच जाना पेगा, यानी कि जन्म लेना पेगा। स्वर्ग विखुंडा दे विच जावांगे, सूक्ष्म जा कारण जन्म लवांगे, जैसे भी असी कर्म करांगे सानू इस जगत दे विच आना पेगा। फिर मनुखे जन्म दा की फायदा होया अगर मनुखे जन्म विच आ करके इह जीवात्मा नू फिर जन्म लेना पै गया। यानी कि जड़ी असी कमाई कीती वह पूर्ण कमाई नहीं सी, अपूर्ण है, अधूरी है। जीवात्मा वास्ते पाप और पुन दोनों ही, यानी कि जिस तरीके दे कर्म अच्छे और बुरे असी करदे आ, दोनों ही बंधन दा कारण ने। क्यों? क्योंकि जीवात्मा नू जन्म और मरण दे विच आना पैंदा है। तो मनुखे जन्म नू सार्थक करन वास्ते, इस दा पूर्ण लाभ प्राप्त करन वास्ते गुरु दी शरण चाहीदी है। गुरु दी शरण दे विच अगर असी जावांगे ते गुरु ही सानू रस्ता दस सकदे ने, ओह दिशा निर्देश दे सकदे ने जिस दे उपर चल करके ए जीवात्मा सदा लई इस जन्म मरण दे गेड़ चो निकल सकदी है। यानी कि अच्छी अच्छी कमाई जड़ी करनी है, वह अच्छी कमाई केड़ी है, वह पूर्ण कमाई केड़ी है, वह सिर्फ और सिर्फ सतगुरु दे उपदेशा अनुसार अपनी हस्ती नू मिटा देना ही है। इस जगत विच असी की देखदे हां, जिस तरीके दा असी वनस्पति दा या कोई भी भोजन बनांदे हां, 12 घंटे 8 घंटे दे बाद असी की देखदे हां, वह भोजन जो है नष्ट होण लग जांदा है, यानी उहदे विच विकार पैदा होण लग जांदा है। हुण उसी भोजन दा रस लै करके इस शरीर दा पोषण किया जाता है, हष्ट पुष्ट असी बनते हैं और उस जीवात्मा नू इस दे विच रह करके अपने घर का भी काम करते हैं, जगत का भी काम करते हैं। तो हुण विचार करके देखो, जिस पोषण भोजन का जो अधिकतम समय है 8, 10, 12 घंटे दे विच उसने नष्ट हो जाना है, तो असी किस मान नू लै करके बैठे हाँ, किस अहंकार दे विच असी चक्कर लगा रहे हाँ कि उसका उस भोजन नू प्राप्त करने दे बाद असी जो हष्ट पुष्ट हाँ इस शरीर का मान करते हाँ, इस शरीर का मान भी झूठा है, अभिमान का कारण है। यानी कि अगर शरीर का मान है तो अभिमान नू जन्म देता है, और अभिमान नू गुरु साहिबान ने सारे संतान ने अपनी बाणी दे विच इको ही लफज नाल याद किया है कि अब मैं दीर्घ रोग है, यानी कि यह गहरा रोग है, यह मार करने वाला रोग है, यह जीवात्मा नू बार बार जन्म मरण के गेड़ विच लेकर के आंदा है। उमै और नाम जड़े ने, उमै नामे नाल विरोध है, दोई ना वसे एक थाई, ये दोनों कदे भी कठे नहीं रह सकते, एक जगह कदे भी नहीं। जिस तरीके नाल अंधकार और प्रकाश है, अगर प्रकाश आ गया तो अंधकार का की काम है, और अगर अंधकार है तो इसका सीधा जा मतलब है कि उत्थे प्रकाश की मौजूदगी नहीं है। इसी करके गुरु साहब उपदेश करते ने, सारे संतान ने उपदेश किया है कि अगर परमात्मा नु प्राप्त करना है तो दीनता की लोड़ है। यानी कि इस जगत दे विच जिस तरीके दे नाल बंजारे ने जो मासा बैठ करके खांदा है और कमाई करता है 8 महीने, उसे तरीके दे नाल मनुखे जन्म दे विच आ करके किरत करनी है, कमाई करनी है, पर किस तरीके दे नाल दीन होकर के, दीनता दे नाल फकीर होकर के उस दे दरबार दे विच उस दे दर ते गरीबी अपनानी है, इस तरीके दे नाल पिया रहना। जिस तरीके दे नाल एक कुत्ता है वह मालिक दे दर ते पिया रहिंदा, उस नू कितना भी दुत्कारो पर वह कदे भी कटदा नहीं, कदे जांदा नहीं, उल्टा पूछ लांदा है, पैरां नू चटदा है, अखीर तरस आ ही जांदा है। एक दिन मालिक जो है उस नू जरूर टुकड़ा दे दिंदा है। उसे तरीके दे नाल एक गल हमेशा याद रखना, इस जगत दे विच उस परमात्मा नूं प्राप्त कीते बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और परमात्मा की जड़ी प्राप्ति है वह कदे भी जीवात्मा जो है जितना भी उदम कर ले, कितनी भी ईमानदार बन ले, कितने भी अच्छे दान पुन कर ले, कदे भी उस परमात्मा नूं प्राप्त करन दा अधिकारी नहीं हो सकता। ये फिर परमात्मा किस तरीके नाल प्राप्त हो सकता? परमात्मा जो प्राप्त होने की जो विधि है उसकी अपनी मौज है, अपनी समर्था है, अपनी मौज का मालिक है। वह जिसनू चाहे अपने नाल मिला ले, जिसनू चाहे अपने तो दूर कर ले। पर देखने विच की आंदा है इस जगत दे विच जिन्हां ने उस परमात्मा नूं प्राप्त किया उन्हां दे विच जो भी गुण सन उन्हां गुणां नूं ही प्रसारित किया जाता है। यही उपदेश दिता जाता है कि जिन्हां ने इस परमात्मा नूं प्राप्त किया है उन्होंने सच्चे होकर के किया है, किसी नूं दुख नहीं दिता, किसी का हक नहीं मारिया, ईर्षा निंदा दे विच नहीं फसे, तां ही जा करके परमात्मा ने उहदा उपर प्रसन्न होकर के दया मेहर नाल अपने नाल मिला लिता। इसी करके इन्हां गुणां नूं असीं भी धारण करिए, अपने अंदरों प्रगट करिए, इसे तरीके का विचरण करते हुए इस जगत दे विच अपने तियां पुत्र जमीन जदा सारे की प्रतिपालना करते हुए अपने घर का भी काम करना है, ता ही जा करके असीं परमात्मा नूं प्राप्त कर सकते हैं। पर एक चीज नूं हमेशा ही चेते रखना, कदी भी परमात्मा ना तो जप दे विच है, ना संयम दे विच, ना ध्यान दे विच, ना किसी वर्त दे विच, ना नमाज दे विच, ना रोजे दे विच, ना किसी कीर्तन दे विच, ना ही कोई ऐसी क्रिया इस जगत दे विच है, कोई तीरथ, कोई भ्रमण, जत तप संयम, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी कर्म नहीं जिस दे विच उस परमात्मा नूं कैद कर लिया जाए। यानी कि असीं अगर ये कहिए कि असीं जप करते हैं 2-2.5 घंटे के जप नाल सानूं परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, तुसीं 24 घंटे हर पल हर घड़ी युगा युग जप करते रहो। ऋषि मुनिया की तरफ देखो, हजारा साल जप करते रहे ने, जमीन के अंदर रह करके, हवा विच बैठ करके, पानी विच रह करके, पर फिर भी उन्होंने अंदर वह परमात्मा प्रगट नहीं होया। ध्यान करते रहे, योगियों ने ध्यान किए, हठ योग अपनाए, इस शरीर नूं कष्ट दिते, कितने योग अपनाण दे बाद, कितने कष्ट चुकण दे बाद, हजारा साल तप करन दे बाद भी वह परमात्मा जो है उन्हां दे ध्यान दे विच नहीं आया, ना जप विच आया, ना ध्यान विच आया, ना संयम विच आया, ना जितेंद्री होके प्राप्त किया जा सका। यानी कि जदों भी परमात्मा जिस नूं भी मिलिया अपनी मौज दे नाल मिलिया, अपनी प्रसन्नता दे नाल मिलिया, तो जीव दा की भाव है? इसका यह अर्थ नहीं है कि असी कोई उदम ही नहीं करना है। जीवात्मा नूं मनुखे जन्म विच आकर के ही पुरुषार्थ करन दा उपदेश दिता जांदा है। मनुखे जन्म विच ही पुरुषार्थ कर सकता है, उदम कर सकता है। बाकी दे जड़े 84 लाख जामे ने उन्हां च विचार करके देखो, बुद्धि ना दी कोई चीज ही नहीं। यानी कि 5वें तत्व का अभाव है, कोई 1 तत्व दे नाल बनिया है, कोई 2, कोई 3, कोई 4 दे नाल। यानी कि यह दिमाग जो है यह 5वें तत्व नाल उत्पन्न हुंदा है, जिसनों आकाश तत्व कहंदे आ। उहदी अभाव दे नाल उन्हां दे वी सोझी नहीं, समर्था नहीं पुरुषार्थ करन दी, परमात्मा नूं प्राप्त करन दी। यानी कि पिछले जन्मां च उन्हां ने जो भी कर्म कीते सन, अच्छे कीते या भैड़े कीते, उन्हां दा बंधनकारी प्रभाव जो है वह जैसियां उन्हां दी कामना सन, उन्हां कामना दे अधीन उस जीवात्मा नूं उन्हां जूनां दे वी जन्म दिता गया, और जैसे कर्मां दा बंधनकारी प्रभाव सी उन्हां दे बंधनकारी प्रभाव दे अनुसार उन्हां दी वृत्ति बनी, और उन्हां वृत्ति अनुसार ही वह क्रिया कर रहे ने। उन्हां नूं उस तों अगे किसी चीज का बोध या ज्ञान नहीं। यानी कि वह चाह करके भी अगर आकाश तत्व गुप्त है, किसी जीवात्मा नूं किसी पिंजरे दे विच आ करके कुछ बोध हो भी जाता है, तो उसनूं इस चीज का पता नहीं चलता कि परमात्मा नूं मैं किस तरीके दे नाल प्राप्त कर सकते हैं। असीं इत्थे बैठ करके मनुखे जन्म दे विच इसकी कीमत नूं नहीं जानते, देवी देवत्यां नूं पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नूं परमात्मा कह करके जानते हैं। कोई निंदिया या वडियाई की गल नहीं है, ये उत्तम भोगी जूना ने यह ड्यूटियां दे रहे ने। जिस तरह गुरु घर दे विच आ करके सानू भी ड्यूटियां बख्शिया जांदियां ने, मान दिता जांदा है, पर यह मान प्राप्त करके असी किस हंकार दे विच किस होमा दे विच आ करके बैठ जांदे आ। कदी जीवात्मा की कोई ताकत नहीं है कि पूर्ण सतगुरां दे कोल जा करके बैठ सके। ये सतगुरां की अपनी मौज है, अपनी ताकत, अपनी समर्था है। वह दया करते ने कि जीवात्मा के वह पाप कर्म जड़े किए ने उन्हां दे उपर नजर नहीं मारते, उन्हां दी तरफों अख बंद कर लेंदे ने। वह सिर्फ उस परमात्मा के अंश यानी कि रूह की तरफ नजर मार करके ये मौका देंदे ने, ये दया मेहर करते ने अपने कोल बैठा की, वह मान सम्मान देंदे ने गुरु घर दे विच प्रबंध करन दा। पर असी उसका की फायदा चुकते हैं, कितना नजायज फायदा चुकते हैं कि असी अपने आप नूं भुल जांदे हां। असी ये भुल जांदे हां कि असी इंसानी जन्म दे विच आ, इंसानी जन्म दे विच आ करके इंसान की देखभाल करन वास्ते सानू रखिया गया है, और एक इंसान जन्म दे विच आ करके उसकी कोई मर्यादा भी है इंसान की, जिसनों इंसानियत किया जाता है। ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਘਾਵ 2-4-6 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਰਵਾਲ ਰੋਏ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਜੜਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੜਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਡਾਲ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵਾਕਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਕਿਤਨੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਜੋ ਦੇ ਤੋ ਮਾਣ, ਗਰਭ ਕੋਰ ਮੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਗਰਭ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚੋਂ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਸ ਬਾਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀੜੀ ਵਾਕਣ ਇਤਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਰੋਂਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੀਨਤਾ ਤਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, कोई यह नहीं दस सकता, इतनी लंबी उम्र नहीं, किसी की इतनी समर्था नहीं, ब्रह्मा भी नहीं दस सकता कि कदों किस वक्त असि इस धरती से उस परमात्मा तो बिछड़ करके आए हैं और बार बार जन्म और मरण के गेड़ दे विच फसे हुए हैं। उसकी वजह की है, सानू परमाया गया, परमाया किसने, उस मन ने परमाया, मन ने इस तरीके दे नाल परमाया, अधूरी ताकतां दे नाल इस तरीके दे चमत्कार दिखा करके इस जीवात्मा नू यह दस दिता कि तेरा मनुखा जन्म उस दे विच मोक्ष दी जो प्राप्ति है वह सिर्फ और सिर्फ दान पुन दे नाल है। और गुरु साहबा ने शुरू च ही स्पष्ट कर दिता है कि दान पुन दे नाल भी यह जीवात्मा वास्ते पाप है। क्यों? क्योंकि यह पुन कट्टण वास्ते या तो उन्हें स्वर्ग वैकुंठा दे विच जाना पेगा या इस दुख दे नाल लै करके इस लोक दे विच जन्म और मरण दे विच यानी कि मनुखे जन्म दे विच भी आना पेगा, यानी कि 84 लाख दे विचों निकलण दा कोई भी उपाय नहीं है। और इसी भ्रम नू लै करके ये जीवात्मा जो है इस तरीके दे निवली कर्म करके बार बार जन्म और मरण दे गेड़ दे विच इस जगत दे विच विचरण कर रही है। और गुरु साहब दे विच यानी जब तक असी पूर्ण सतगुरां दी गुरबिन बावले तरे ना कोई, यानी कि जब तक असी तुलसीदास जी ने अपनी बाणी भी स्पष्ट किया है कि गुरु की शरण दे विच नहीं जाते, गुरु दे विच ताकत है, गुरु दे विच समर्था है इस जगत तो ले जान दी, यानी कि इस भव चागल तो अगर असी पार होना चाहते हैं तो सानू दीनता नू अपनाना पेगा। यह दीनता कदों पैदा होंदी है? सब तो पहले अगर कोई जीवात्मा इस 84 लाख जामे दे विचों निकल करके परमात्मा नू मिलन लई तड़फदी है, तड़फ उत्पन्न करती है, यानी कि विरा 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 आखिए विरा तू सुल्तान, जो तन विरा ना उपजे सो तन जान मसान। बाबा फरीद जी ने अपनी वाणी दे विच कितनी शानदार गल कही है कि जिस तन दे विच विरा नहीं है उसनू मसान जान। मसान कहंदे ने जिसले एक मुर्दे नू असी साड़दे आ, मुर्दा सड़ जांदा है, पिछे मिट्टी बचदी है, हुण ओह मिट्टी किस लायक है? किसी मथे दे लगाण दे लायक नहीं है, किसी काम नहीं आंदी, यानी कि उसनू असी दरिया दे विच रोड़ देने आ, किसी काम दी नहीं है, यानी कि असी जींदे जी इस एक लाश दे बराबर हाँ, एक मुर्दे दे बराबर, एक मसान दे बराबर। अगर साडे अंदर ओह ललक नहीं है, ओह असी पैदा नहीं कीती उस परमात्मा नू मिलण वास्ते, कोई ऐसी हवस नहीं पैदा कीती, असी जगत दी वस्तुआं संबंधां नू प्राप्त करन वास्ते पागल होए पे आ, किस तरीके दे नाल अपनी हस्ती मिटा रहे हैं, कितनी हवस साडे अंदर है, किसी साडे संबंधी दा विआह हो जाए, जमना मरना हो जाए, 12-12, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे, 2-2 दिन असी पलक चप्पे बगैर दिन रात असी सेवा करदे आ, इस तरीके दे कर्म करदे आ, पर जदों उस परमात्मा नू प्राप्त करन दी वारी आंदी है, भजन दी वारी आंदी है, उस वेले साडा शरीर जवाब दिंदा है। यानी विचार करके देखो 24 घंटिया दे विच असी भजन किस वकत करना पसंद करदे आ, किस वकत परमात्मा दे नाल जुड़ना पसंद करदे आ। जदों सवेर हुंदी है सब तो पहले असी अपने मुख काम करदे आ, जेड़े कि साडे धंधे दे नाल संबंधियां दे नाल तियां पुत्तर मां बाप दे नाल संबंध रखदे ने, ओह सारे ही कर्म असी करदे आ। यानी ओह सारे कर्म करदे होए सारा दिन बीत जांदा है, सारा शरीर टुटन लग गया, थकावट हो गई, रात हो गई, बिस्तरे ते पहुंच गए, उस वेले भी सानू जा करके ख्याल नहीं आंदा। पर अगर ख्याल आंदा वे तो उस वेले साडे शरीर दे विच ताकत नहीं है, समर्था नहीं है, उम्र दा तकाजा है, और सारा दिन असी सारी अपनी हस्ती जड़ी है वो सारी ताकत इस जगत दा काम करन वास्ते यानी कि पराए गधे बन करके इस जगत विच ही खजल कर दिती, हुण चाह करके भी असी उस परमात्मा दा भजन नहीं कर सकते, अपने अंदर वो ठरक ललक पैदा नहीं कर सकते उस परमात्मा दी परमात्मा नू मिलण दी, ते फिर किस तरीके दे नाल जब तक वो विरह नहीं होएगी वो प्रेम दी पैदा नहीं हो सकती। विरह तो प्रेम दी उत्पत्ति है, अगर विरह ही नहीं है तो प्रेम कित्थों आ जाएगा? हुण विरह ते है इस जगत दे नाल, ते प्रेम असी परमात्मा दे नाल किस तरीके दे नाल कर सकते हैं? वो प्रेम भी जो है साडा झूठा है, वो प्रेम भी सारा इस जगत दी वस्तुआं दे नाल है। साडा बच्चा बीमार हो जाए, सारी रात असी उहदे सराणे बैठ करके कट देने आ कि बीमारी है, थोड़ा जिहा उहदा शरीर तप रहा है, पर सानू डर है। किस चीज का डर है? कि बच्चा साडे हथों ना निकल जाए। कई बार असी सुनदे भी हां कि बच्चे ने थोड़ा जा बुखार चढ़िया और वह चोला छड़ गया, यानी कि साडे अंदर वो डर पैदा हो गया कि साडे नाल भी ऐसा भाणा ना वरत जाए। इस करके साडे अख जड़ी है वह चपकदी नहीं, पलक चपकदे नहीं, उहदे सराणे ही असी सारी रात जो है बैठ करके कट देंदे हां। क्यों? क्योंकि डर है। किस करके? प्यार करके। प्यार है उस बच्चे दे नाल, और उस बच्चे दे प्यार दे विचों डर दा पैदा होया है। किस चीज दा? कि बच्चा साडे हथों ना निकल जाए। हुण जिस दे अंदर विरह नहीं, प्यार नहीं, ते डर कित्थों उत्पन्न होएगा? यानी कि विरह जिस परमात्मा नू प्राप्त करन वास्ते जीवात्मा ने अपना ले, उस नू उस दे नाल प्रेम भी हो जाएगा, और अगर परमात्मा दे नाल प्रेम हो जाएगा सत्संग जी फिर पक्की गल है कि सवेरे उठन दे बाद वो कदे भी इस जगत का काम बाद इच करेगा, पहले अपना भजन करेगा, पहले अपने गुरु दे उपदेश दा पालन करेगा जो उसके सतगुरु ने अपनी शरण दे विच बिठा करके उसके सिर दे उपर प्यार दा मेहर पर हाथ रख करके उसने उपदेश दिता सी कि किस तरीके दे नाल इस संसार दे जंजाल दे विचों तू निकलना है और उस उपदेश नू पालन करते हुए तू अपने सतगुरु नू प्राप्त करना है अंतर दे विच, तां ही वो प्यार प्रेम दी उत्पत्ति होएगी। हुण जिसने ऐसी विरह पैदा कर ली अपने सतगुरु दे नाल प्रेम कर लिया उस दे विच वो सत पक्की गल है कि जड़ा अद्धी राती उठ करके उस परमात्मा दा भजन करेगा उस नू डर भी पैदा हो जाएगा। किस चीज दा डर कि किथे मेरी कमाई ए जगत दे संबंधी या ए मोह ममता जो है खो ना लवे, यानी कि मैं परमात्मा तो उस सतगुरु तो दूर ना हो जावा। असि बार बार फरियाद करते हैं उस परमात्मा दे अगे कि सानू अपने तो दूर ना कर दे। ए दूर करन दा भाव जो है ए उना जीवात्मा दे अंदर पैदा हुंदा है जड़े ईमानदारी दे नाल निमाणे हो करके दीन हो करके उस परमात्मा नू प्राप्त करना चाहते ने, जड़े तड़फदे ने जिन अपनी उस जीवात्मा नू जड़ी की भुखी और प्यासी है उस दे उद्धार करन वास्ते उस परमात्मा नू मिलना चाहते ने, सदा लई इस जीवात्मा नू मुक्ति देना चाहते ने। ओही उस जीवात्मा जो है उस परमात्मा दे नाल प्यार कर सकती है और प्यार दे नाल ही ए डर पैदा हुंदा है। जदों साध संगत जी ए डर दी तलवार सतगुरु दा डर कीती गई कमाई दे खो जान दा डर हुण कोई कह सकदा है वाणी दे विच किया गया है कि जड़ी भजन दी कमाई है ए कोई खो नहीं सकदा। साध संगत जी विचार करके देखो असी बड़ा भजन करदे आ, बड़ा भजन जुड़ भी गया है, जड़ा जुड़ गया है उन कोई नहीं ला सकदा, उसका फल निश्चित है। हुण विचार करके देखो अगर कोई ममता कोई मोह कोई ऐसी वस्तु साडे अंदर कार कर गई असी किसी दा ऐसा जीवात्मा दा संग कर लिया यानी कि जिस दे अंदर मन दा कोई विकार प्रबल है ऐसे साकत दा संग असी करन दे बाद अगर अपने इस रस्ते तो भजन बंदगी दे रस्ते तो दूर हो गए, अच्छे कर्मा तो दूर हो गए, सतगुरु दे घर दी सेवा तो दूर हो गए, तो हुण विचार करके देखो जड़ी असी उत्तम कमाई करनी सी इस जीवात्मा नू मुक्त कराण वास्ते असी क्या उस कमाई तो दूर नहीं हो गए, वो कमाई साडे कोल खोई नहीं गई, यानी कि असी चाह करके भी उस कमाई नू उस वक्त कर नहीं सकते, क्यों साडे अंदर जो है इस जगत दी ममता पैदा हो गई और माया ने जो है इस ममता दे जरिए इस जीवात्मा नू परमा दिता, एक ऐसा पर्दा दे दिता कि उस पर्दे दे विच परले पासे वो परमात्मा दा जो तस्वीर है वो प्रकाश है जो आवाज है वो सानू सुनाई नहीं देंदे। यही वजह है कि अज असी की देखदे आ कि सदियां ही हो गईयां इस जीवात्मा नू परमात्मा तो अलग होए वो परमात्मा दा गुण जो कि आवाज स्वरूप है जो स्वरूप है जो दे विचों ही आवाज आंदी है राग रतनवर पार परियां शब्द गाउन आईयां ये जड़ी तुक है ये वो इशारा करदे ने गुरु अर्जन देव पातशाह वो इस तुक दी तरफ ये मतलब निकलदा है कि वो परमात्मा दी जड़ी आवाज है वो इस तरीके दी आवाज है एक मिठी रागणी है जिस तरह की बहुत सारियां परियां परिवार समेत मिल करके उस परमात्मा दे गुण नू गा रही ने यश नू गा रही ने, इसे तरीके दी ये आवाज एक प्रकाश दे विचों निकलदी है और ये प्रकाश की है ये जड़ और चेतन दा आधार है। इस सृष्टि दे विच जितना भी जो कुछ भी असी देखदे आ चाहे सूक्ष्म लोक ने यानी त्रिकुटी तक दा राज और उस तो अके चेतन परम चेतन मंडल ने हर चीज दा जो भी पैदा कर रहा है उधार कर रहा है आधार दे रहा है वो सब दे पिछे ए प्रकाश और आवाज है और इसी प्रकाश और आवाज नू नाम दी संज्ञा दिती गई है, शब्द किया जांदा है, अकथ कथा किया जांदा है, वाणी किया जांदा है, कीर्तन किया जांदा है, यानी कि जो कुछ भी है ए प्रकाश और आवाज है और इसी गुण नू असी प्राप्त करके ही उस परमात्मा दे नाल मिल सकते हैं। अगर असी इस गुण नू प्राप्त नहीं कर सके तो याद रखना जितना मर्जी जप तप असी कर लीए जितने मर्जी पाठ पोथियां कर लीए जितने मर्जी भोग पा लीए जितने मर्जी कीर्तन और दासां कर लीए कदे चाह करके भी असी इस जीवात्मा दा उद्धार नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज तक असी नहीं कर सके, असी जब दा जन्म लिया है कोई पहली बेरी इस जगह नहीं आकर के बैठे या सत्संग सुन रहे, असी बहुत सारे ऋषि मुनिया दी शरण विच गए हां उन्हां दे उपदेशां नू श्रवण कीता है पर विचार करके देखो कदे भी असी उस फल नू प्राप्त करन दी नहीं कोशिश कीती क्योंकि फल लगन दे बाद डाल नू चुकना चाहिदा सी, उपदेश सुनन तो बाद होना की चाहिदा सी। ए जीवात्मा चेतदी चेतन दा की भाव है कि उस जो निर्देश दिता सी ऋषि मुनिया ने असी उस दे उपर अमल कर दे, असी कदे भी उसना दे उपर अमल नहीं कीता ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਕੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਰਨਾਮਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲ ਕੀਰਤ ਕੇਵਲ ਹਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਕਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 2-4-5 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਂ ਨਾ ਆਓ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੋਜ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਮਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਰ ਤੋਂ ਦੀਨਤਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਵਕਤ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਵਕਤ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਕੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਯਾਕੂਤ ਨੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ और जिस परमात्मा की तू गल कर रहा है उस परमात्मा के बारे मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं आज तक उस परमात्मा का कदे नाम नहीं लिया, ना मैं कदे उस परमात्मा की चेत आई है और ना ही कदे उसने मैं चेताया है। और यह वचन करके वह सिख जो है उतो चला गया और जो ही चला गया उस वेले आकाशवाणी हुई है कि हे याकूत तू कौन होंदा है मेरे एक बंदे नू मेरे दिते हुए खाने तो मसहूद करन वाला यानी उसनू बेदखल करन वाला यानी कि इस तो विचार कर उसनू बुला करके पूछ कदी उसने मेरा नाम लिया है और कदे उस पहले भी कदी भुखा रहा है। उसने जकूत ने उसनू बुला करके सिख नू पूछा कि कदी पहले भी तू भुखा रहा। उसने कहा नहीं आज पहली बेरी है कि मैं इस खाने तो बेदखल किया जा रहा, इस तो पहले मैं कदी भी भुखा नहीं रहा, हमेशा ही मैं परपेट भोजन मिलिया है। उस वेले आकाशवाणी दोबारा हुई कि हे जकूत मैं कदी भी ये दान पुन या इस तरीके की वस्तुआ के जरिए मैं कदी भी किसी नू प्राप्त नहीं होया, इस करके सारे भ्रम चो निकल जा, जड़ा मैनू याद नहीं करता, जड़ा कदी चेत नहीं आई जिसनू मेरी उसका भी मैं परपेट भोजन दिंदा वा, यानी कि सारे जगत जड़ और चेतन का आधार मैं ही हाँ और मैं ही सब की प्रतिपालना कर रहा। और अगर तू मैनू प्राप्त करना चाहता है तो मेरे जीवा दी यानी कि सृष्टि च लगाए गए बाग दी हर एक दी सेवा कर, हर एक दी बंदगी कर, हर एक दी पूजा कर, हर एक दे विच मैनू रमिया होया देख, ताई जा करके तू इतना दीन हो पाएगा कि मैनू हर जगह देखने दे बाद अंतर दे विच मेरे निज स्वरूप नू भी तू प्राप्त कर सकेगा। तो इस तो स्पष्ट हो जाता है कि यह जीवात्मा अगर अपना उद्धार करना चाहती है तो जब तक दीन नहीं होगी तब तक असि उसनू प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु साहब के समय दे विच भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत आंदा है भाई बेला जी का, जिन्हां ने कि बड़े ही निमाणे होकर के उस परमात्मा की सतगुरु की प्राप्ति की। किस तरीके दे नाल जो एक जट सिख जो है गुरु साहबा दे कोल पहुंचया है, सेवा मंगी है कि मैनु भी अपने कोल सेवा दा मौका दियो, मैं भी तुहाडी सेवा करना चाहुंदा वां। गुरु साहबा ने हुक्म कीता है भाई तू कोई शस्त्र चलाना जानदा है? कहन लगा जी नहीं। क्या लंगर पानी बनाना जानदा है? कहन लगा जी नहीं। या तेरे च कोई ऐसा गुण है कोई पाठ पढ़न पूजा दा? कहन लगा जी नहीं, मैं ते कदी कोई भी अक्षरी ज्ञान नहीं, मैं कदी किसी किताब दे नजदीक भी नहीं गया। ते गुरु साहब उपदेश करदे ने ते भाई तू फिर आप ही दस दे तू किस तरीके दी सेवा करना चाहुंदा, किस तरीके दा तू काम कर सकदा हां। उसले भाई बेला जी ने यह किया है कि मैनू तुसी घोड़िया दे कोल रखो, मैं घोड़िया दी संभाल करांगा, उन्हां दी लिद साफ करिया करांगा। हुण एक जट है, अज जट नू कितना अभिमान है, कितना अहंकार है अपने जात वर्ण श्रेणी दा, पर उस भाई बेला दी तरफ देखो वो सारे अपनी जात दा अभिमान त्याग करके जगत दी सारी वस्तुआं दा त्याग करके निमाणे होकर गुरु दी शरण विच गए ने और घोड़िया दी सेवा जो है उन्हां दी सेवा करन लई यानी कि उन्हां दी पालना लई है, उन्हां दी लिद साफ करदे ने, उन्हां दी मालिश करदे ने और जिस तरीके दे यानी कि भोजन समाग्री घोड़िया नू चाहीदी है और टाइम ते उन्हां नू दिंदे ने। एक बारी गुरु साहब जदों देखण आए ने बड़े प्रसन्न होए ने, घोड़े बड़े हष्ट-पुष्ट सन ते उस वेले बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने बेलिया नू किया है भाई बेलिया कितना कु पढ़िया लिखिया? कहन लगा जी मैं पढ़िया कोई नहीं हैगा। उस वेले गुरु साहब अपनी मौज विच मस्त सन, बड़ी प्रसन्न सन, कहन लगे भाई बेलिया तेन असी पढ़ाया करांगे, तू साडे कोल आया कर, असी तेरी ए कमी जड़ी है वह भी दूर कर दांगे। हुण गुरु की प्रसन्नता आ गई, मौज आ गई, रहमत करन दा विचार आ गया तो शिष्य नू जो है अपने कोल खिंच लिया है। जदों तो अगले दिन तो भाई बेला जी रोज ही जो है गुरु साहब को तैयार होकर के जाते ने और गुरु साहब कोई ना कोई रूहानियत दे नाल संबंध रखने वाला एक ना एक उपदेश देंदे सन, कोई लंबा चौड़ा पाठ नहीं सन पढ़ाते, एक वचन करते सन भाई बेलिया कोई झूठ नहीं बोलना, तू सिर्फ सच ही सच बोलना है, बस ऐ उपदेश दे देंदे सन। किसी दे होर दिन आया ते कहन लगे भाई बेलिया किसी दे उपर क्रोध नहीं करना, तू निमाणे होकर के रहना है, यानी कि जैसा भी उपदेश सतगुरु ने करना। भाई बेला जी गंढ मारदे जांदे सन, यानी कि इतने निमाणे हो गए गुरु दे उपदेश, एक ते गुरु दे उपदेशां च गुरु दी ताकत काम करदी है, दूसरा शिष्य ने भी यह जान लिया सी कि गुरु पूरा है, गुरु ही मैनू मुक्ति दे सकदा है, गुरु ही उस पार ब्रह्म तक ले जा सकदा है जिथे जा करके जीवात्मा आवागमन तो मुक्त हो सकती है, यानी कि उस रस्ते नू अपना लिया। प्रैक्टिकल तौर ते इतने निमाणे हो गए कि यानी कि गुरु दा ही रूप हो गए। ये अगले दिन एक बारी की होया कि भाई बेला जी तैयार होकर के जिले गुरु साहब कोल पहुंचे ने तो गुरु साहब उसले जल्दी भी सन, तैयार होकर के किथे जा रहे सन, तो बेला ने जिसले मथा टेक करके अब पाठ पूछया है कि आज दा की पाठ है, तो गुरु साहब ने मुस्कुरा करके कहा वाह भाई बेला ना पहचाने वक्त ते ना पहचाने बेला, और घोड़े ते सवार होकर के चले गए ने। तो भाई बेला जो सन अक्षरी ज्ञान तो दूर सन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਪਾਠ ਪੜਾ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਰਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਵੇਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਤਨਾਗਰ ਜੋ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਤਨਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੀਰਤਨ ਕੁਛ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਦੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕਰਕੇ, ਸੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੀ ਰੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਠ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਵੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਣੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਤਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਦੀਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਜੀਨਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਔਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਤ ਔਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ एक पंग मंगाई है, वो पंग मंगा करके सिखा नू दिती है कि भाई तुसी इस नू अच्छी तरह कोट कर, इस नू कल ले करके दरबार दे विच पेश होना है। उस वेले सिंघा ने जो है कल्पे तो पहले ही होए सन कि किन्ने साल हो गए असी सतगुरु की सेवा कर दे पर सानू यह पदवी या पद प्राप्त नहीं होया, जिथे जिन्हू आज बेला ने घोड़े की लिद साफ करके प्राप्त कर लिया। गुरु साहब उस दे उपर इतने दयाल हो गए ने, यानी कि निमाणे ते असी हो नहीं सके पर होमा अंदर दे अंदर होमा होर वध रही है। बांस की है जो जो दिन निकलते जाते ने बांस निमाणा होने की बजाय होर आकाश की तरफ चढ़दा। जो जो असी गुरु घर दे विच दो चार पांच दस साल ज्यादा सानू होंदे जाते ने, यानी समय बीता जाता है, असी सेवा करते हुए हंकार दे विच गर्क होंदे जाने हैं, यानी जिस तरीके नाल बांस उपर नू वधदा उसे तरीके दे नाल साडी होमै भी वधदी है और होमै इतनी वध जाती है कि असी चाह करके भी नहीं थले झुक सकते और अखीर किसान नू की करना पैंदा, वह दराती लैके साडी जाड़ी कट दिंदा, उत्तों नहीं कटदा वह जड़ों कटदा, क्यों? क्योंकि वह किसी भी काम दा नहीं बांस, और फिर उस दियां बासरियां बना करके फूका मारी जांदियां इह होमै दी अग नू शांत करन वास्ते। यानी कि अगले दिन दरबार दे विच उन्हां सिखां ने जिसले वह भंग दा जो मटका तैयार करके पेश कीता उसले गुरु साहबां ने वह सारे सिंघां नू बुलाया, वह सारे पाठियां नू बुलाया जिन्हां नू भाई बेला दे उपर इतराज सी, और जिसले सारे सिंघ इकट्ठे होए ने उस वेले सारिआं नू गुरु साहबां ने उपदेश कीता भी सारे एक ही गिलास इहदे विचों भंग दा लवो और कुरला करदे जाओ, किसी ने अंदर नहीं लंघानी। वह सारे ने इसे तरीके नाल कीता, मटका खाली हो गया और सारे जाकर के कुरला करके एक पासे बैठ गए। उस वेले गुरु साहबा ने एतराज करन वाले सिंघां नू सवाल कीता, भाई सिंघो तुसी ये दसो तुसी सारे ने कुरला कीता भंग दा, किसे नू नशा होया है? सारे ने एतराज कीता गुरु साहबा नू भी तुहाड़ा हुक्म सी अंदर नहीं लंघाना, अंदर लंघाया नहीं तो सानू नशा किस तरीके दे नाल हो सकता सी? हुण गुरु साहब मुस्कुराते ने कहन लगे भाई तुसी कल दरबार दे विच भाई बेला दे उपर इतराज कीता सी, तुसी बहुत सारी व्याख्या करते हो धर्म वड्डे वड्डे ग्रंथा दे वड्डे वड्डे अर्थ देंदे हो, किन्हां नू देंदे हो? संगत नू देंदे हो, सेवादारां नू देंदे हो, पर आप कदे उस दे उपर अमल नहीं कीता। यानी कि गुरु बन के दीक्षा ते देंदे हो पर कदी भी गुरु दे उस पद दे उपर उस रस्ते दे उपर नहीं चले, कदी भी वो आचरण नहीं अपनाया। किस तरीके दे नाल जिस तरह तुसी कुरला करदे रहे तुहानू नशा नहीं होया? नशा ते उदों ही होना सी जिसले भंग तुहाडे ढिड दे विच जांदी। उसे तरीके दे नाल तुसी साडे कोल जरूर रहे हो, पूरन सतगुरां दे शरण भी लई है। भाई बुढ़ा जी जो सन छे सतगुरां दी शरण विच रहे ने, उस तो अगे उन्हां नू की प्राप्ति होई? यानी कि पूरन शिष्य भी बड़े अच्छे तरीके दे नाल, यानी कि छेवीं पातशाहियां ने अपनी दया मेहर दे नाल उन्हां नू वो पदवी पूरन शिष्य दी दित्ती जो है। उस तो पहले कदी भी वो ऐसा मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सके जिहड़ा कि भाई गुरु अंगद देव जी ने प्राप्त किया, गुरु अमरदास जी ने प्राप्त किया। उसकी वजह की सी? उन्होंने कितने साल सेवा की, सिर्फ और सिर्फ निमाणे होकर के, यानी कि समय नहीं देखा जाता, निमाणापन देखा जाता, तड़फ देखी जाती है कि कोई कितना ईमानदार है। असि पूरन सतगुरां दी शरण विच ते आंदे हां, वचन भी सुनते हां, उन्हां दे कोल बैठे भी रहिंदे हां, बड़े ही उच्ची होकर के अभिमानी होकर के अभिमान ही इकट्ठा करते हैं, कभी निमाणापन इकट्ठा नहीं किया। सो गुरु साहबां ने यही उपदेश उसले कीता कि जब तक तुसी जड़ा रस्ता सिखा नू देंदे हो संगत नू देंदे हो इस रस्ते दे उपर प्रैक्टिकल तौर ते अपनाओगे नहीं चलोगे नहीं तब तक तुहानू जिस तरीके दे नाल भंग दा नशा नहीं होया तब तक तुसी उस परमात्मा यानी गुरु दे निज स्वरूप नू प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दात नू भाई बेला जी ने निमाणा होकर के वक्त और वेले नू त्याग करके प्राप्त कीता उस नू तुसी कई साल यानी कि अपनी उम्र बिता दी पूरन सतगुरां दे कोल पर कदी भी उस पद नू प्राप्त नहीं कर सके, अपनी जीवात्मा नू आवागमन तो मुक्त नहीं कर सके। पर यह कदों संभव है? जदों तुसी इस उपदेश दे उपर अमल करो। तो साध संगत जी इस दृष्टांत तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, यह दृष्टांत गुरु साहब सिर्फ और सिर्फ इस करके देंदे ने कि सानू यह कहानियां याद रह जांदियां, यह जड़िया कथा दसदे ने उन्हां दा कुछ ना कुछ निशानी साडे अंदर घर कर जांदी है, क्योंकि मन बहुत चतुर है। हुण पूरा सत्संग भावे अद्धे घंटे दा या दो घंटे दा कीता जाए उहदे जितनी भी बाणी खोल के व्याख्या कीती जाए वह कदे भी साडे अंतर दे विच पूरन तौर ते ध्यान दे विच नहीं रह सकदी। इसी करके पूरन सतगुरु जो ने कोई ना कोई चिन्ह साडे सामने रखदे ने, वह चिन्ह रखण दा मकसद की है? भाव सिर्फ और सिर्फ इको ही हुंदा है कि जीवात्मा दे अंतर दी सफाई कराई जाए और उसनू किले दे नाल बंधिया जाए। यानी कि गां नू अगर असी रोकना चाहते हां ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉਦਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਇਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ